माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपाद भरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय भरा हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिव्रतकाचार्य शोतर्षत शिष्य मदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य शोतर्षत शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, शिष्य गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवतसार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 76वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है शाल्व और वृष्णि वंशियों के मध्य युद्ध। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। श्री शुक उवाच, अथन्यादपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप, क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हता। श्रीशुक उवाच अधन्यादपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृपा क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतेर्हतः। श्रीशुक उवाच अधन्यादपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतेर्हतः। उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ अब अन्य दूसरे अपि भी कृष्णस्य कृष्ण के शृणु सुनो कर्म कार्य अद्भुतम विचित्र नृप। हे राजा, क्रीड़ा खेल करने के लिए नर मनुष्य जैसा शरीरस्य शरीर का यथा कैसे सौभपति ही सौभ का स्वामी शाल्व हतः मारा गया। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौभपति का वध किया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राभि पीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो। कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वशक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्सारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाइन अदीनी चतह कर हानमंच कदाचिन माम प्रेम नारद कंठ यो सुरा। हरे कृष्ण। पिछले अध्याय में वर्णन किया गया कि दुर्योधन किस प्रकार अपमानित अनुभव करता है, उसका मान मर्दन होता है। और अब इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी अन्य कथाओं को भी कह रहे हैं। अब हम लोग 10वें स्कंद के 76वें अध्याय पर आ गए हैं। बस अब ये और कुछ ही अध्याय बाकी हैं, 90 अध्याय हैं, तो कुछ ही और अध्याय बाकी हैं, फिर ये स्कंद समाप्त होगा। तो अब कुछ और लीलाओं को भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि इतनी आतुरता है परीक्षित महाराज को सुनने के लिए। तो जैसे हमने अभी श्लोक के तात अनुवाद में पढ़ा, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि और सुनो, अभी तुमने सुना भगवान के अद्भुत कर्म, कैसे उन्होंने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया, अब और उनके अद्भुत कर्मों को सुनो। तो अब जो लीला कहने जा रहे हैं शाल्व की, जो द्वारका पर आक्रमण करते हैं, तो इस अध्याय में पहले 7 श्लोकों में शाल्व का इतिहास दिया है, या कैसे उसको जो विमान प्रमुख उसका था कैसे प्राप्त हुआ। और फिर अगले श्लोकों में 8 से लेकर अध्याय के अंत तक युद्ध का वर्णन है, कैसे युद्ध हुआ। तो ये युद्ध तब हुआ, ये आक्रमण तब हुआ जब भगवान अभी हस्तिनापुर में ही थे, इंद्रप्रस्थ में ही थे, अभी आए नहीं थे भगवान कृष्ण, आएंगे तो अगले अध्याय में। ये जब युद्ध आक्रमण किया तब भगवान नहीं थे वहां, बलराम जी थे लेकिन कृष्ण नहीं थे द्वारिका में, और मारने के लिए बाद में कृष्ण गए थे। तो अब इस अध्याय के प्रारंभ में वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कि किस प्रकार शाल्व के इतिहास को कहते हैं। तो शाल्व ये रुक्मिणी का जब हरण किया श्री कृष्ण ने, तो जरासंध इत्यादि के साथ ये भी वहां उपस्थित थे शिशुपाल की रक्षा के लिए। ये सारे एक ही प्रकार के असुर हैं, तो ये भी वहां उपस्थित थे।
और इन्होंने देखा कि कृष्ण ले गए रुक्मिणी को हरण करके और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो भौतिक चेतना में जब विफलता आती है या सफलता आती है तो सफलता अहंकार लाती है और विफलता द्वेष लाती है। ये भौतिक जगत का नियम है। आध्यात्मिक जगत में सफलता नम्रता लाती है और विफलता समर्पण। तो यहां पर विफलता हुई शाल्व को तो द्वेष बढ़ गया और उसने एक घोषणा कर दी, एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस पृथ्वी से ये वृष्णि वंशियों को यदु वंशियों को समाप्त कर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा उनको। बहुत अच्छा है। और इस द्वेष से भरे हुए हृदय को लेकर वो शिवजी के पास चले गए शिवजी की तपस्या करने के लिए, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात वो ये जानते थे कि जब तक शिवजी मेरी मदद नहीं करेंगे मैं द्वारका वासियों यदुवंशियों का कुछ नहीं कर सकता, तो कोई तो मुझे मदद चाहिए, अकेले नहीं। तो उन्होंने बहुत समय तक, एक वर्ष तक करीब तपस्या की, शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। वैसे तो शिवजी आशुतोष है, आशुतोष मतलब आशु यानी बहुत जल्दी, तोष यानी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। तो वैसे तो वो आशुतोष हैं, बस थोड़ा सा कुछ कीजिए संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन शाल्व बड़ी कड़ी तपस्या कर रहा था, दिन में बस एक मुट्ठी मिट्टी खाता था वो, बस इतनी तपस्या। पता नहीं कहां से उसको ये समाचार मिला कि मिट्टी खानी चाहिए एक 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 ही दिन में एक बार। स्कंद पुराण या अन्य पुराणों में कहीं इस व्रत का वर्णन नहीं है जो शाल्व ने किया। अन्य व्रतों का वर्णन बहुत है लेकिन ये व्रत का वर्णन नहीं। तो देवताओं के पास जाते हैं लोग, भगवान भगवद गीता में बताते हैं काम श्रेष्ठ हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि अन्य देवताओं के पास लोग जाते हैं और क्या करते हैं, अपने ही नियम बनाते हैं उनकी पूजा करने के लिए। तम नम नियम आस्थाय, अपने ही नियम बना रहे हैं। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, शास्त्र में सारे नियम भगवान की संतुष्टि के लिए है। तो देवता के पास जाते हैं और अपने नियम बनाते हैं। देवताओं के पास भी जाकर कम से कम जो शास्त्र के नियम है उसका पालन करें तो भी ठीक है, कम से कम हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न होगी आगे चलकर। लेकिन अपने ही नियम बनाते हैं। काम स्थित हृत ज्ञाना, जिनके ज्ञान को हरण कर लिया गया है काम के द्वारा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि शाल्व शिव जी से कुछ मांगने के लिए गए। तो लोग क्यों जाते हैं देवताओं के पास, क्या कारण है? काम स्थित ज्ञान, हृदय काम से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है, द्वेष से भरा हुआ है, जैसे शाल्व का था। तो विफलता आई और द्वेष बढ़ गया। लेकिन हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक चेतना में व्यक्ति को विफलता आती है वो और कृष्ण को समर्पण करता है, कष्ट आते हैं वो समर्पण करता है, द्वेष नहीं बढ़ता, अन्यों को दोष नहीं देता। अगर हम अपनी विफलता में अन्यों को दोष दे रहे हैं, अन्यों से हमारा द्वेष बढ़ रहा है, तो हमारी चेतना भौतिक है। लेकिन अगर हमारी विफलता में हम कृष्ण को समर्पण करने के लिए और तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं तो ये आध्यात्मिक चेतना है। सफलता में अहंकार बढ़ रहा है, भौतिक चेतना है। सफलता में नम्रता बढ़ रही है कि ये सफलता ये कृष्ण के कारण है, मेरी क्या योग्यता है। रावण को सफलता मिली, रावण अहंकार बढ़ गया, लेकिन भक्तों को सफलता मिलती है, उनकी नम्रता बढ़ जाती है, मेरा क्या गुण है, मेरा क्या करना, सब कुछ कृष्ण करते हैं। तो ऐसे देवताओं के पास जाते हैं लोग जिनका हृदय काम से भरा होता है। तो क्यों जाते हैं देवताओं के पास? आना तो कृष्ण के पास चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुष परम। तो आपके हृदय में अगर काम से भरा हुआ भी हृदय है तो उसको भी लेके कृष्ण के पास जाना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। लेकिन जाते हैं देवताओं के पास, क्यों जाते हैं? पहला कारण, क्योंकि वे भौतिक गुणों में भी निम्न गुणों में फंसे हुए हैं। जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। तो भौतिक गुणों में भी निम्न गुणों के प्रभाव में रहने के कारण वे देवताओं के पास जाते हैं। ये लक्षण है, बहुत रजोगुण होता है, कुछ प्राप्त करना है इस जगत में, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो फिर वो देवताओं के पास जाते हैं। तमोगुण में है, किसी का नाश करना है, मैं यदुवंशियों का नाश करना चाहता हूं, ये तमोगुण है, तो देवताओं के पास जाते हैं। तो फिर अगर तमोगुण भी है रजोगुण भी है तो आना तो भगवान के पास चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? दूसरा कारण या तीसरा कारण, पहला कारण हमने दिया काम से हृदय भरा हुआ है, दूसरा कारण अभी हम लोगों ने चर्चा की कि तीनों गुणों में से भी निम्न गुणों में है, और तीसरा कारण भगवान की परम अवस्था को जानते नहीं है या स्वीकार नहीं करते। वे सोचते हैं देवता हमें जो दे सकते हैं वो भगवान नहीं दे सकते। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधी, आपके हृदय में कामनाएं नहीं है, कामनाओं से भरा हुआ है, मुक्ति चाहिए, परम पुरुष के पास जाइए, कृष्ण के पास। तो वो परम अवस्था को वो नहीं समझते हैं कृष्ण की, कि कृष्ण परम है, अन्य देवता उनके अधीन है, और इसीलिए वो देवताओं के पास जाते हैं। तो निम्न गुणों में है इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। कृष्ण की परम सत्ता या परम अवस्था को स्वीकार नहीं करते इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। और साथ ही साथ भौतिक कल्मश का लेश मात्र भी उनके हृदय से कमी नहीं हुई है इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में भौतिक कल्मश कम होना प्रारंभ हो जाता है वो हर अवस्था में कृष्ण के पास जाता है, तो उनके हृदय से अभी भौतिक कल्मश गया नहीं है इसीलिए देवताओं के पास हो जाते हैं। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसे लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना को भूले हुए हैं, आध्यात्मिक अवस्था को भूले हुए हैं, और इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक अवस्था पता हो वो देवताओं के पास क्यों जाएगा? वो तो जान जाएगा कि ये भी मेरी तरह है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख नहीं मांगता, सही है कि नहीं? जब उसको पता है कि ये भी भिखारी है मैं भी भिखारी हूं, इससे क्या मांगना, कोई सेठ जी आएंगे उनसे मांगेंगे। तो जब हमें अपनी अवस्था पता चल जाती है कि हम भी जीव हैं वो भी जीव हैं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या भिक्षा मांगे, कृष्ण से मांगिए जो मांगना। तो इसीलिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को हम नहीं जानते हैं इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि देवताओं के पास जाकर संतुष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति रहता असंतुष्ट ही है देवताओं के पास। ऐसा नहीं कि देवताओं से उनको कुछ प्राप्त हो जाता है तो बड़ा संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब कृष्ण के पास जाता है तो जो प्राप्त होता है वो संतुष्ट करता है। भक्त हर अवस्था में संतुष्ट है, लेकिन देवी देवताओं के निकट जाने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उनसे वर प्राप्त कर भी असंतुष्ट है। तो इसीलिए देवताओं के पास वो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने बड़े छोटे उद्देश्य को अपना जीवन बना लिया है, या अपने जीवन का उद्देश्य बहुत छोटा रखा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में वो खतरा नहीं है कि हमने बहुत ऊंचा उद्देश्य बना रखा है और हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए, वो कोई गलती नहीं है, वो विफलता नहीं है। हमारे जीवन की विफलता ये होगी कि हमने बहुत छोटा उद्देश्य बना रखा और हमने उसको प्राप्त कर लिया, ये हमारे जीवन की विफलता है। तो देवी देवताओं के पास जाने वालों ने अपना जो उद्देश्य बड़ा छोटा रख रखा है, क्या छोटा है? धन मिल जाए, रूप मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, घर सुखी रहे, बस इतना बहुत है, सुरक्षित रहें, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका। तो ये हमने बना रखा है, बड़ा छोटा सा उद्देश्य है ये। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें वो प्राप्त हो जाता है और फिर हम कृष्ण के पास नहीं जाते, बड़े उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो देवी देवताओं के निकट जाते हैं, इनको कहा गया काम श्रेष्ठ हृतक ज्ञाना, इनका जो ज्ञान है वो हरण कर लिया गया है और वो कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे शाल्व भी गए, शिवजी से तपस्या की, अपने ही नियम बनाए, और शिवजी पहले ही आना चाहते थे, नहीं आ रहे थे। शिवजी एक वर्ष के बाद आए, क्यों? शिवजी सोच रहे थे इसको क्या वरदान दूंगा, जो भी दूंगा वो बेकार जाने वाला है, पहले भी बाणासुर को दिया था मैंने, कुछ नहीं हुआ कृष्ण के सामने। तो शिवजी नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब तपस्या करते रहे तो शिवजी आए, एक साल बाद उन्होंने वरदान दिया। तो प्रश्न आता है कि शिवजी आए ही क्यों, जब ये जानते थे कि ये वरदान भगवान के विरुद्ध इस्तेमाल करने वाला है, तो आना नहीं चाहिए था, करता रहता तपस्या, चला जाता था हार कर। तो शिवजी को आना पड़ा। इसका कारण है कि जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवता बाध्य होते हैं उनको कुछ देने के लिए, वो स्वतंत्र नहीं है देवता। और दूसरा, शिवजी ने सोचा कि ये मुझे समर्पण कर रहा है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लोक में क्या प्रसिद्ध होगा कि शिवजी अपने समर्पित भक्त के प्रति कोई चिंता नहीं करते, इसलिए जाना होगा। ये जानते हुए कि जो भी वरदान मैं दूंगा वो विफल होने वाला है, शिवजी आए। क्यों? क्या उनको अपनी विफलता देखनी थी? नहीं, वो कृष्ण की सफलता देखना चाहते थे। तो भक्त का जब वचन टूट जाता है, कृष्ण जब उसके वचन को तोड़ते हैं तो उसको आनंद बढ़ता है। भीष्म देव का वचन तोड़ा श्री कृष्ण ने, भीष्म ने वचन लिया था कि कल या तो पांडवों को मार दूंगा, नहीं तो कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे। तो कृष्ण ने कहा कोई नहीं, मैं तोड़ देता हूं वचन, पांडवों को नहीं मारना। तो भीष्म का जब वचन टूट गया, भीष्म ने लिया था मैं पांडवों का वध करूंगा, और कृष्ण की वजह से टूट गया वचन, भीष्म को बड़ा आनंद आया। जब कृष्ण भागे उनकी ओर मारने के लिए, भीष्म को क्रोध नहीं आया, द्वेष नहीं आया, भीष्म बड़े प्रसन्न थे, कृतज्ञ थे। तो जब भक्त का वचन टूट जाता है भगवान के कारण, भगवान की इच्छा से, वो कृतज्ञ हो जाता है। तो शिवजी इसलिए वचन दे रहे हैं। तो आए, पूछा भाई क्या चाहिए शाल, बताओ। अब जो भौतिक चेतना में होते हैं वो क्या मांगते हैं, मुझे एक ऐसा विमान चाहिए। विमान क्या, उसने पूरी नगरी ही बना ली विमान की। तो ऐसा विमान चाहिए जिसमें, जिसको कोई भी मनुष्य, देवता, गंधर्व, किन्नर इत्यादि कोई उसको कुछ समाप्त ना कर पाए, उसको कोई खराब नहीं कर पाए, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाए। और विशेषता उसने कहा कि मैं वृष्णि भीषणम, मतलब वृष्णि वंशियों को इसके द्वारा मैं बहुत कष्ट पहुंचा सकूं, ऐसा विमान चाहिए। तब देखिए, एक भक्त से वो मांग रहे हैं कि मुझे वो प्रदान कीजिए जिससे मैं अन्यों को कष्ट दे सकूं, और विशेष करके भगवान को। और शिवजी ने जब ये सुना तो शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिव जी ने कहा कि इसने मेरी शरण ली है, मैं तो मार नहीं सकता इसको, भगवान मारेंगे, बहुत अच्छा है, भगवान के पास जा रहा है तो भगवान मारेंगे। तो फिर शिव जी ने तुरंत वचन दे दिया, तथास्तु। तो क्या उसको प्राप्त हुआ? तो मैं दानव से कहा शिव जी ने, इसके लिए बहुत बड़ा विमान बना कर दो। तो बहुत बड़ा विमान, नगरी बनी, विमान नहीं कहना चाहिए, वो विमान नगरी थी। तो उसको बनाया मैं दानव ने, बहुत शक्तिशाली था, और ऐसा था कि उसके चारों ओर अंधकार था, मतलब वो दिखता ही नहीं था, और बड़ी तेज स्पीड से जाता था ऊपर से, बहुत ऊपर से जाता था और बहुत तेज रफ्तार में जाता था, और चारों तरफ अंधकार था, दिखता ही नहीं था, तो कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता था। आजकल भी सेनाओं के पास कुछ ऐसे विमान होते हैं जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, तो जो रडार होता है उसमें भी डिटेक्ट नहीं होते हैं, ताकि उनको मारा ना जा सके। तो इस तरह का विमान दिया, उसको सौभ नाम दिया, सौभ नाम का, यहाँ पर हमने पढ़ा सौभपति, सौभपति मतलब सौभ नाम के विमान जो शाल्व के पास थे तो उनको दिया। तो क्या इच्छा की थी कि कोई भी इसको खराब नहीं कर पाए, कोई इसको समाप्त नहीं कर पाए, सुरक्षित रहे हमेशा। हम लोग भी भगवान से या देवी देवताओं से भगवान के पास आकर भी यही मांगते हैं कि मेरा विमान बड़ा सुरक्षित रहे, कोई देवता कोई मनुष्य मेरे घर को कुछ कर नहीं पाए, दूसरे का घर बाढ़ में डूब जाए कोई बात नहीं, दूसरे के घर में भूकंप आ जाए कोई बात नहीं, मैं आपका भक्त हूं, मेरा घर सुरक्षित रहना चाहिए। और जैसे शाल्व ने कहा कि मैं वृष्णी वंशियों, क्योंकि वो सोचे थे उसके शत्रु हैं, तो हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे जो शत्रु हैं जो भी बुरी चीज है उसको हम नाश कर सकें, बस यही हमारी प्रार्थना होती है। तो अपने घर को बनाए रखना, हम सोचते हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, तो अगर सही दृष्टि में हमें अपना घर बनाए रखना है तो हमें पहले अपने घर को पहचानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अपने घर बनाना या अपने घर को संभालना, लेकिन अपने शाश्वत घर को। इस जगत में हम बहुत सारे घर बना रहे हैं, बना चुके हैं, कई जन्मों में घर बनाए होंगे, पक्षी से लेकर पशु से लेकर जिस प्राणी में मनुष्य योनि में सब में घर बनाए हमने। हाँ, बड़े प्रेम से घर बनाते हैं, टूट जाता है फिर अगला घर बनाते हैं। जैसे पक्षियों के बारे में देखा जाता है, घोंसला बनाती है चिड़िया और बड़ी मेहनत करके घोंसला बनाती है, एक एक तिनका लाती है, लगाती है एक एक तिनका लाती है, बड़ा सुंदर घोंसला बन जाता है, तेज हवा आती है या फिर कोई व्यक्ति आता है या कोई पशु आता है, टूट के गिर जाता है, चिड़िया दुखी होती है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर से बनाना प्रारंभ करती है। ये हमारा जीवन है, हम एक घर बनाते हैं, एक शरीर लेते हैं, घर बनाते हैं, फिर समाप्त हो जाता है, टूट जाता है, हम फिर दूसरा बनाते हैं और हमें लगता है यही जीवन संघर्ष है। ये मूर्खता है, मूर्खता है बारंबार घर बनाना, कितने घर बनाते रहेंगे हम। इसीलिए शाश्वत घर बनाइए और उस प्रार्थना कीजिए भगवान से कि उस पर कोई आंच ना आए, उसके आक्रमण करने वाले कौन है, हम ही है, हम ही अपने घर को समाप्त करते हैं, इसलिए प्रार्थना कीजिए भगवान से। तो सौभ नाम का ये नगरी या ये विमान नगरी उनको मिली और जिस पर वो बड़े आराम से बैठकर इधर उधर जाया करते, बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत उन्होंने कहा कि अब जाकर तो हमें द्वारका पर आक्रमण करना है। तो ये जो सौभ है, हम जब इसको पढ़ रहे थे तो हमारे मन में एक और शब्द आया जो ऐसे ही है, सौभाग्य। सौभ से सौभाग्य तक। शाल्व सोच रहा था कि सौभ मिलने से अब मेरा सौभाग्य हो गया, अब मैं वृष्णि वंशियों को इस पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ये उसका भ्रम था, केवल सौभ पूर्ण नहीं है, सौभाग्य होना चाहिए। तो कैसे सौभ से सौभाग्य तक हम जा सकते हैं? इस जगत में हम लोग कुछ चीजों को अच्छा मानते, ये बड़ा भाग्य है, और कहीं दुर्भाग्य मानते, अरे अरे कितना गलत हो गया, बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा। जैसे एक बार एक किसान था, तो उस किसान के पास एक घोड़ा था, तो लोग आकर उसको कहते थे क्या तुम्हारा घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, भाग्य है तुम्हारा। तो किसान कहता था क्या भाग्य है इसमें, आपको क्या भाग्य दिखाई दे रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घोड़ा चला गया कहीं पर, भाग गया। अरे अरे, सब लोगों ने आकर कहा बड़ा बड़ी बुरी बात है, आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, दुर्भाग्य की बात है कि आपका घोड़ा भाग गया। उसने कहा क्या दुर्भाग्य की बात, था घोड़ा ठीक है, चला गया ठीक है। थोड़े समय बाद घोड़ा वापस आ गया और आया तो दो और घोड़ों को लेकर आया। ये जो जानवर होते हैं हमसे ज्यादा प्रचार करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देखा है हमारे मंदिर में एक गाय आया करती थी, तो पहले एक गाय दो गाय आती थी, तो हमने उनको कुछ देना शुरू किया, खिलाना शुरू किया, अच्छा सुबह सुबह आते हैं इनको खिलाया। तो देखा कि चार पांच दिनों में ही 15 गाय आने लग गई। हमने कहा देखो कितना अच्छा प्रचार है इनका, हम लोग प्रयास करते हैं किसी को मंदिर लाने के लिए, वो नहीं आते हैं, हमारा प्रचार बहुत कम है, लेकिन इनका प्रचार बड़ा अच्छा होता है। तो एक गाय आ रही थी, उसने कहा अरे इधर प्रसाद मिलता है मंदिर में, चलो सब 15 गाय आने लगी और रोज आती थी, फिर उनका नियम हो गया था, तो बड़े अच्छा लगा था। तो ऐसे ही घोड़ा गया, दो घोड़ों को ले आया, तो वो भी दो घोड़े बड़े अच्छे थे, तो सबने आकर कहा कितना सौभाग्य है तुम्हारा, बढ़िया हमारे पास और घोड़े। उसने कहा क्या सौभाग्य। फिर एक बार उनका बच्चा कुछ खेल रहा था, लड़का उनका युवक था, खेल रहा था, घोड़ों से गिर गया, टांग टूट गई। अरे सबने आकर कहा क्या बड़ी बुरी बात हो गई आपकी। तो उसने कहा कोई बुरी बात नहीं, क्या है, टूट गई टांग टूट गई। थोड़े समय बाद ऐसा हुआ कि गांव से जितने भी युवक थे उनको सबको ले जाया गया कि सेना में भर्ती करना है, युद्ध हो गया, चलो सब पकड़ पकड़ कर। लेकिन अब इसकी बेचारे की टांग टूटी थी, इसको छोड़ गए। तो सबने आकर कहा अरे कितना भाग्य है तुम्हारा, सारे लड़के चले गए तुम्हारा नहीं गया। तो इस जगत में हम ऐसे ही फंसे रहते हैं, भाग्य दुर्भाग्य भाग्य सौभाग्य, असली सौभाग्य जानते नहीं है। तो इस जगत में अगर हमें असली सौभाग्य जाना है, ऐसा लगता है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सच्चा सौभाग्य क्या है। सच्चा सौभाग्य है कि हम ये ना देखें कि ये चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं। हमें ये देखना चाहिए कि कृष्ण के मन में क्या है, कृष्ण के अनुसार चीजें बुरी या सही गलत होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सौभाग्य जीव का है अगर वो इस बात को समझ कर इस जगत के अच्छे बुरे में ना फंसे, जैसे घोड़ा चला गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इस बात को समझ कर कि कृष्ण के मन में क्या है वो ज्यादा जरूरी है। एक एक इंस्ट्रूमेंट बने, एक निमित्त बने कृष्ण का, वो सौभाग्य की बात, इस जगत में वो सौभाग्य है। तो हमारा सौभाग्य क्या है? सौभाग्य है हमारा कि अगर हमें किसी भक्त का मार्ग निर्देशन मिलता है, ये इस जगत में सौभाग्य है। और उससे भी अच्छा, उससे बेहतर सौभाग्य या श्रेष्ठ सौभाग्य, तो सौभाग्य श्रेष्ठ सौभाग्य और सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य। तो सौभाग्य क्या है? अगर हमें किसी भक्त का मार्गदर्शन मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। उससे श्रेष्ठ सौभाग्य क्या है? अगर हमें भक्त से सुनने मिल रहा है, श्रवण करने मिल रहा है, ये हमारा श्रेष्ठ सौभाग्य है। और सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य क्या है? अगर हमें भक्त से सतत सुनने को मिल रहा है, वो हमारा सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। इसलिए उस सौभाग्य की ओर जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है जो हमारा भाग्य बनाता है, जिसके द्वारा हम भाग्यवान बने हैं। क्या मिला है? हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला, पूजा करने का अवसर मिला। ये जो बड़े बड़े देवताओं को नहीं मिलता, हम सीधे कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो पहला भाग्य हमारा कहना चाहिए कि भाग्य के लक्षण, कि अगर हमें भाग्यवान है या नहीं जानना है तो इन चीजों को जानना है। धन मिला, संपत्ति मिली, ये किसी व्यक्ति को भाग्यवान नहीं बनाता, धनवान बना सकता है, प्रतिष्ठावान बना सकता है। सही दृष्टि में सौभाग्य है कि अगर हमें भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। आप सोचिए कितना भाग्य है कि हम उन भगवान का, जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको हम भोग अर्पण कर रहे हैं, उनको हम श्रृंगार कर रहे हैं, उनको हम अभिषेक कर रहे हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रचार कर रहे हैं, उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा ये सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य हमारा कि हमारे जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य है। ये बहुत कम होता है, लोगों के जीवन में उद्देश्य बदलते रहते हैं उनकी स्थितियों के अनुसार। भक्त के जीवन का उद्देश्य कभी नहीं बदलता, सुख में भी कृष्ण की प्रसन्नता और दुख में भी कृष्ण की प्रसन्नता। तो इसलिए भक्त के जीवन में ये दूसरा लक्षण है उसके सौभाग्य का। पहला लक्षण, भगवान की पूजा करने का अवसर मिल रहा है, ये भी बड़े भाग्य की बात है। दूसरा हमारे जीवन में स्पष्ट उद्देश्य है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, कोई और उद्देश्य नहीं है और ना ही उद्देश्य बदलता है, और ये उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हमने जीवन में एक उद्देश्य बना लिया, हम उसी को कर रहे हैं, लेकिन वो उद्देश्य अच्छा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है और ये उद्देश्य कभी नहीं बदलता, स्पष्ट है। हर भक्त के जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता, बस कृष्ण और भक्तों की प्रसन्नता। इसीलिए तीसरा हमारे लिए सौभाग्य का लक्षण है कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ, कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं, उद्देश्य को स्पष्ट रख पा रहे हैं जीवन के, और भक्तों के संग में है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। हम इसको समझ नहीं रहे हैं, वो हमारी गलती है। हम सोचते हैं ये तो ठीक है, ये तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन वो देखिए अगर कोई पद को प्राप्त कर लेता है वो सौभाग्य है, धन को प्राप्त कर लेता है वो सौभाग्य है। प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं कि एक देश के बहुत बड़े नेता अगले जन्म में उनका जन्म एक चूहे का समान या एक कुत्ते के समान हुआ है, एक आचार्यों के अधिकार अनुसार। ये एक प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने ये बताया कि उनका ऐसा जन्म हुआ है। तो क्या लाभ है उस चीज का? आपने बहुत धन प्राप्त कर लिया, बहुत संपत्ति प्राप्त कर ली, बड़ा मान सम्मान प्राप्त कर लिया, और अगले जीवन में कुत्ते बने हुए हैं, पूंछ हिलाकर भाग रहे हैं ऐसे लोगों के पीछे, लात खा रहे, पत्थर खा रहे हैं उनके। क्या लाभ हुआ आपके जीवन? और अगर मान लीजिए कोई अच्छे कुत्ते भी बन गए जिनको बेड पर सोने का अवसर मिल रहा है, शैंपू से नहा रहे, तो भी क्या लाभ है? है तो कुत्ते, ऐसे जीवन का लाभ क्या है? इसीलिए सच्चा सौभाग्य ये नहीं है कि इस जगत में हमें क्या प्राप्त हुआ, सच्चा सौभाग्य ये है कि कृष्ण इस जगत के परे जो वस्तु है वो हमें प्राप्त हुई, ये सच्चा सौभाग्य। कृष्ण की पूजा, जीवन का उद्देश्य और भक्तों का संग। तो सौभ से सौभाग्य की ओर जाइए। सौभ शाल्व ने लिया, अगर हम सौभ पर हैं, शाल्व हैं, अगर हम इस जगत में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत हम सोचते हैं हमारा सौभाग्य ये होगा कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जाने। सौभ शाल्व, सौभाग्य क्या है, भक्त क्या है, कि मैं कृष्ण की सेवा करता रहा, मैं कृष्ण के उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को कभी ना भूलूं और कृष्ण के भक्तों की शरण में रहूं। ये उद्देश्य होना चाहिए कि सदैव तादेर चरण से भक्त सनेवा, जन्म जन्म होए अभिलाष। कहा गया है कि बस भक्तों के चरण में वास मिले, जन्म जन्म यही अभिलाष। तो ये सच्चा सौभाग्य है। इसीलिए हम सबको सौभ से सौभाग्य की ओर जाना है, शाल्व से भक्त की ओर जाना है, देवताओं से कृष्ण की ओर जाना है, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर जाना है। तो ऐसे अब जब शाल्व को ये मिल गया तो अब द्वारका पर जाकर आक्रमण किया, और वर्णन किया गया द्वारका पर पहुंचा, ऊपर से बहुत आक्रमण कर रहे, सैनिक भी थे उसके साथ, और पूरी सेना को लेकर पहुंचा, और ऊपर से बहुत कुछ गिराया जा रहा है, जो द्वारका की नगरी थी, द्वारका के जो वहां पर बने हुए बगीचे थे, अन्य स्थान थे, बड़े बड़े महल थे, उनको तोड़ने लगे, विध्वंस करने लगे, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे मानो वर्षा हो रही है ऊपर से, और वृक्ष आ रहे हैं, पत्थर आ रहे, और जैसे ओले पड़ते हैं वर्षा के समय, ऐसे ऊपर से पत्थर और सांप गिर रहे हैं, अर्थात कष्ट देना चाहते थे। तो इतने सारे सांप गिरेंगे, लोग भागेंगे, हाहाकार मचेगा, ये क्या हो रहा है? और वही हुआ, द्वारका वासियों में हाहाकार हो गया, ये क्या हो रहा है? तो बलराम जी थे वहां पर, तो बलराम जी ने देखा, तो बलराम जी ने कहा ठीक है आओ युद्ध करने चलते हैं। तो उस समय प्रद्युम्न थे वहां पर, भगवान के पुत्र। तो प्रद्युम्न ने बलराम जी से कहा, आप क्यों जाते हैं, आप बैठिए, हम जाएंगे। युद्ध करेंगे, तो प्रद्युम्न निकले, सांब निकले, सात्यकी निकले, तो ये सब निकले युद्ध करने के लिए अकेले। उन्होंने कहा आप नहीं जाइए, हम युद्ध करने जाएंगे, तो ये सब निकले हैं कि हम लोग युद्ध कर लेंगे। तो अब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो देखा कि अरे बड़ा मायावी दृश्य है, कभी कभी ये विमान एक होता है, कभी अनेक हो जाता है, कभी विमान गायब हो जाता है, कभी कहीं से कुछ गिर रहा है। लेकिन प्रद्युम्न को कोई चिंता नहीं थी, प्रद्युम्न का तो शरीर भी दिव्य है, भगवान के ही समान माने गए हैं। तो उन्होंने बहुत आसानी से इस सबको समाप्त कर दिया, और इतना ही नहीं, जहां जहां वो प्रकट होता था वहां वहां तीर प्रकट हो जाते थे। तो शाल भी बड़े आश्चर्य में हो गए कि ये क्या हो रहा है। उसने सोचा था मैं इनको भ्रमित कर दूंगा, लेकिन शाल खुद भ्रमित हो गया। और जो शाल्व का सेनापति था द्युम्न, तो उसको भी 25 तीर मार दिए एक साथ प्रद्युम्न ने, वो तो बेचारा परेशान हो गया। तो ऐसे प्रद्युम्न ने साफ इतना भयंकर युद्ध किया कि देखकर दोनों तरफ के लोग प्रद्युम्न का गुणगान करने लगे कि क्या युद्ध कर रहा। और ऐसे में जो द्युम्न था, जब इतना इतना युद्ध चल रहा था, तो जो द्युम्न वहां पर था वो भी अब और युद्ध करना चाहता था। तो प्रद्युम्न ने इतना भयंकर युद्ध किया था कि ऐसा वर्णन है कि जैसे मानो कि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य कैसे अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे प्रद्युम्न नाम का सूर्य निकला। तो जितना भी मोह उत्पन्न, माया उत्पन्न कर रखी थी शाल्व ने, वो सब समाप्त कर। तो तुलना बड़ी अच्छी है, हमारे जीवन में भी चारों ओर माया का प्रभाव है। कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया रा अधिकार। तो अगर इस मायावी जगत को मारना है तो हमें कृष्ण नाम के सूर्य को प्रकट कराना होगा। तो फिर जब द्युम्न था वो भी युद्ध करने फिर से वापस आया, और इस बार उसने बहुत, उसकी बड़ी बलशाली गदा थी, और उस गदा से उसने प्रद्युम्न की छाती पर वार किया। और जब छाती पर वार किया, इतना भयंकर वार था कि प्रद्युम्न भी थोड़ा सा पीछे गिर गए, मूर्छित हो गए। तो जब प्रद्युम्न मूर्छित हो गए, सब चिल्ला उठे, हाय हाय, ये तो मर गया, मारा गया, मारा गया। सबको लगा मर गया, क्योंकि बड़ा तेज वार किया था और प्रद्युम्न उसको सहन नहीं कर पाए थे। तो सब कहने लगे ये तो मारा गया, मारा गया। अब जो उनके सारथी थे प्रद्युम्न के, तो उन्होंने देखा, वैसे उनके सारथी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि प्रद्युम्न को कुछ हो ही नहीं सकता, उनका शरीर दिव्य है, उनके शरीर पर ये जो छाती पर मारा है ये, इससे कुछ नहीं होगा, उनकी छाती चूर चूर नहीं हो गई है। लेकिन प्रेमवश उस बात को भूल गए, ऐसा होता है, प्रेमवश व्यक्ति भूल जाता है। तो भूल गए कि प्रद्युम्न को कोई कुछ नहीं कर सकता। दोनों को लगा कि अरे इनको हो गया, तो तुरंत उन्होंने वो रथ वहां से हटा दिया, तो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूर लेकर चले गए। अब प्रद्युम्न एक मुहूर्त तक मूर्छित रहे, और फिर उनको जब मूर्छा आई तो उन्होंने देखा कि अरे ये कहां ले आए, तो उनको पता चला कि ये मुझे युद्ध से बाहर ले आए, तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, आज तक कोई वृष्णि वंशी युद्ध छोड़कर भागा नहीं है। कृष्ण की बात अलग है वो तो अलग रूप से गए थे, मतलब इस तरह की युद्ध करते करते फिर छोड़कर बीच में से भाग आए। तो मैं तो कोई वृष्णिवंशी भागा नहीं है, मेरा तो तुमने नाम खराब कर दिया, क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर मैं बलराम जी को, अभी इतना कहकर आया था आप चिंता मत कीजिए मैं युद्ध करके आता हूं, क्या मुंह दिखाऊंगा, और भगवान कृष्ण जब आएंगे मेरे पिता उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मुझसे पूछेंगे कि अच्छा बस इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, और उतना ही नहीं जो मेरे अन्य भाई हैं उनकी पत्नियां मेरा कितना उपहास करेंगी, मैं जब जाऊंगा तो वो कहेंगे ओ लो आ गया कायर नपुंसक, तो तुमने मेरा जितना भी मेरी प्रसिद्धि थी सब नाश कर दी। तो उस समय बहुत क्रोध किया उनको कि क्यों तुम लेकर आए मुझे यहां पर, ऐसा नहीं करना था। तो उस समय जो सारथी थे उन्होंने प्रद्युम्न से कहा कि देखिए मैंने जो किया वो शास्त्र के आधार पर, जो मेरा कर्तव्य है एक सारथी का कर्तव्य दिया गया है कि रथी की रक्षा करना। उन्होंने कहा सारथी का कर्तव्य है रथी की रक्षा करना और रथी का कर्तव्य है सारथी की रक्षा करना। तो जब मैंने देखा कि आपकी ऐसी अवस्था है तो मेरा परम कर्तव्य था आपकी रक्षा करना, इसीलिए मैं आपको ले आया, इसमें कोई दोष नहीं है। तो खैर जब इस तरह से उन्होंने कहा तो प्रद्युम्न ने स्वीकार किया, ठीक है अब जो भी हो गया क्या करें, मेरे नाम पर धब्बा तो लगी गया है लेकिन अब उसको दूर करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे जब ऐसी अवस्था में प्रद्युम्न रहे तो अब अगले अध्याय में वर्णन आएगा कि आगे कैसे युद्ध हुआ और कृष्ण ने कैसे शाल्व का वध किया। तो ये हम कल सुनेंगे कि किस प्रकार शाल्व का वध श्री कृष्ण ने किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में? प्रश्न है कोई? ओके, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भागवतम श्रवण कर रहे हैं, ओके सो कोई प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न है कि नहीं? वैसे तो काफी लोग हैं यहाँ पर, सो आप सबका स्वागत धन्यवाद आप सब आए। प्रश्न हम देख रहे हैं, कहीं पर कुछ कहा गया है। ओके, सूरत से कविता माता जी ने लिखा है कि आज के दिवस पर वो आप सबके आशीर्वाद चाहते हैं। आज उनका जन्म दिवस है तो उन्होंने प्रार्थना की है कि हम सब उनको आशीर्वाद दें ताकि उनका ये जो जन्म है वो सफल हो सके और भगवान की वो शुद्ध भक्त बन सके कृष्ण की प्रसन्नता गुरु और गौरांग की प्रसन्नता से। सो प्रार्थना करते हैं कविता माता जी के लिए कि श्री कृष्ण की कृपा हो उनके ऊपर, जीवन कृष्ण के लिए वो दे सकें, जहां भी जिस अवस्था में रहें कृष्ण को भूले नहीं, इस बात को भूले नहीं कि कृष्ण उनके स्वामी हैं और उनकी सेवा करना उनके जीवन का लक्ष्य है, और इसको सदैव याद रखते हुए श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हुए इस जन्म को वो सार्थक करें और इस जन्म के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो और कहीं कुछ तो प्रश्न नहीं दिख रहा है। एक प्रश्न है कि भक्ति में हमें घर बनाना चाहिए या नहीं, या भक्त हमें घर बनाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, भक्तों को घर बनाना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है शायद। बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए और उस घर को मंदिर बनाना चाहिए। बहुत सारे मंदिरों की आवश्यकता है तो घर बनाइए, लेकिन घर बनाते समय योजना ये बनाइए कि ये मत बनाइए कि मेरा बेडरूम कितना बड़ा होगा। घर बनाते समय योजना ये बनाइए कि सत्संग करने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो जितनी ज्यादा हॉल बड़ा बनाइए ताकि सत्संग हो सके, कृष्ण का मंदिर बनाइए, और फिर अगर जगह बचे तो छोटा सा अपना कमरा बनाइए। तो घर बनाइए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, भक्तों को बनाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के प्रचार के हेतु। ठीक है, ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।